તારીખ 26-8-1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 364 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 293
દર્શન પ્રશ્ન 364 પૃષ્ઠ 197 अपने शुद्ध स्वरूप का विकल्पात्मक यथार्थ ज्ञान हो उससे चैतन्य की विशेष महिमा आती है। क्या प्रश्न है? स्वरूप महिमा संबंधित प्रश्न है। स्वरूप की महिमा जानकारी से आती है क्या? विकल्पात्मक ज्ञान में शास्त्र को पढ़कर या प्रवचन को सुनकर स्वरूप की महिमा आ सकती है क्या? ऐसा प्रश्न पूछा है। समाधान देते हैं कि विकल्पात्मक ज्ञान अधिक हो यानी बहुत हो तो शुद्ध स्वरूप की महिमा विशेष महिमा आए, ऐसा नहीं है। ऐसे तो लोग पढ़ कर करके पंडित हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, बहुत जानते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, इससे कोई स्वरूप की महिमा आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। जब तक विकल्प की प्रधानता, विकल्प की प्रधानता माने राग की प्रधानता बनी रहती है, वहां तक स्वरूप की महिमा नहीं आती। स्वरूप तो राग रहित पूर्ण वितराग स्वरूप है। आत्मस्वरूप जो है वो तो राग रहित पूर्ण वितराग स्वरूप है। जहां तक राग की प्रधानता है, मतलब जहां तक राग का अवलंबन है, राग का आश्रय है, उस राग की मुख्यता में स्वरूप की मुख्यता नहीं हो सकती। राग की भी मुख्यता रहे और राग रहित स्वरूप भी मुख्यता रहे, दो मुख्यता विरुद्ध विषय की कैसे बन सकती है? तो वो संभवित नहीं है, क्योंकि महिमा में तो मुख्यता होती है, तो दो विरुद्ध विषय की मुख्यता कैसे आएगी? और राग की मुख्यता में राग के विषय जो पर पदार्थ है उसकी मुख्यता तो गर्भित है ही, इसलिए राग भी पर है और राग का विषय भी पर है। पर की भी मुख्यता और स्व की भी मुख्यता दो बात बन सकती नहीं है। पर की मुख्यता में स्व की मुख्यता का अभाव रहता है और स्व की मुख्यता में पर की मुख्यता का अभाव रहता है। महिमा है उसमें रस आता है, जिसकी महिमा है जिसकी मुख्यता है उसमें रस आता है। तो पर का भी रस और स्व का भी रस, वो बात कैसे बनेगी? या तो स्वयं का आत्मरस हो या तो अनात्मरस हो, पर का रस हो, दो बात तो एक साथ तो होने वाली है ही नहीं। और बहुत से पहलू हैं इस विषय में कि जिसकी मुख्यता है उसकी सावधानी बरतती है। तो राग की मुख्यता है और उसमें पर की मुख्यता है तो राग की और पर की सावधानी बनी रहेगी, बनती रहेगी, तो उसमें स्वरूप सावधानी होने का कोई प्रसंग बनता नहीं है। और स्वयं की सावधानी है उनको राग की और पर की सावधानी नहीं होती, उपेक्षा हो जाती है। तो अच्छा स्पष्टीकरण है ये। हाँ, राग की मुख्यता, राग की मलिनता दिखे तो, राग में आकुलता का अनुभव होवे तो, विकल्प में दुख लगे तो छूटे। कहीं लोग ऐसे लेते हैं कि हमको स्वरूप की महिमा आएगी तब तो राग की मुख्यता आएगी, तब तो राग की मुख्यता और महिमा छूटेगी ने, तो वो तो बात बनने वाली है ही नहीं। जहां खड़े हो वहां जो गड़बड़ है वो गड़बड़ मालूम नहीं पड़े तो वहां से कहां से छूटेगा, और उसमें मलिनता भी है और आकुलता भी है। दो बात तो स्थूल ज्ञान में भी समझ में आनी चाहिए तभी उसकी मुख्यता छूटेगी। इससे ज्ञानी कहते हैं कि प्रथम विकल्प में दुख लगना चाहिए, बहस के वचनामृत में भी आता है, सुगानी जी के वचनामृत में भी वो बात आती है। पहले राग से हटने की तैयारी होती है तो राग से हटा जाता है और चैतन्य की ओर आने का अवकाश होता है। हाँ, और स्वलक्ष्य ज्ञान में भी नास्तिक का विषय आए बिना नहीं रहेगा। क्यों? कि अस्थि का विषय सूक्ष्म है और नास्तिक का विषय स्थूल है। ज्ञान स्वलक्ष्य हुआ तो अपने में ही नास्ति चल रही है, पहले तो वो नजर आएगी। हाँ, सहज ऐसा ही बनेगा। जैसे कोई कुआ है, कुएं में पानी भी है, अब हमको कुएं में तल तक जाना है, तल में पड़ी हुई चीज को ले आना है, तो ऊपर की सपाटी को छुए बिना कहाँ से जाएगा नीचे? पहले तो ऊपर की सपाटी को स्पर्श होगा फिर अंदर में जाएगा ना। ऐसे ये सब रागादि तो ऊपर ऊपर तीरते हैं, बाकी तो स्वभाव तो अंदर में है, भीतर में है, तो पहले ही ऊपर की चीज को स्पर्श हो ही जाएगा कि ये गड़बड़ है। दूसरी बात वो है कि हमको एक गंदगी का जगह में से दुर्गंध आ रही है, गंदगी हो गई है और हमको दुर्गंध आ रही है। हम ये सोचे कि यहाँ सुगंध फैलाना है तो सुगंध आएगी, सुगंध फैलाएंगे तो सुगंध आएगी, तो हम सेंट का अत्तर का स्प्रे कर दें, ठीक है क्या? नहीं, पहले गंदगी को साफ करो फिर सुगंध का स्प्रे करो, छंटकाव करो, तभी तो आपकी जो सुगंध है वो बेकार नहीं जाएगी, वरना गंदगी पर सुगंध वो स्प्रे करोगे तो वो बेकार हो जाएगी। इसलिए मुमुक्षु है वो भूमिका की सफाई का, सफाई की भूमिका है। फिर ज्ञान दशा में आगे बढ़ने की बात है, तो मुमुक्षु की भूमिका में जो सफाई हम नहीं करेंगे तो ज्ञान दशा आएगी कहां से, और आएगी तो रहेगी कहां। बेन से मुमुक्षु की भूमिका में कुछ पत्र लिखे हैं अपने बड़े भाई को, तो उसमें एक जगह लिखते हैं कि हमको सम्यक दर्शन चाहिए चाहिए, हमको सम्यक दर्शन चाहिए, हम चाहते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन आएगा तो रखेंगे कहाँ। हाँ, हमको तो हीरा जवाहरात चाहिए, लेकिन हमारी झोपड़ी में उसकी सुरक्षा करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तिजोरी के तो पैसे नहीं, और जवाहरात चाहिए। मानो के दे दिया किसी ने, रखेंगे कहाँ, वो तो लूट चोरी हो ही जाएगी, ऐसे सम्यक दर्शन को कहाँ रखेंगे। चाहिए तो सही लेकिन रखेंगे कहाँ, ऐसा प्रश्न उठाया है। इसलिए पात्रता विशेष होने के लिए ये सत्संग स्वाध्याय से पहले भूमिका अगर तैयार होती है तो ज्ञान दशा आ सकती है। भूमिका ही नहीं हो ज्ञान दशा कहाँ से आएगी जी। पात्रता के और दर्शन मोक्ष मंदता, कषाय रस की मंदता, कषाय की नहीं, कषाय रस की मंदता, दर्शन मोक्ष मंदता, और ज्ञान में हित अहित का विवेक, ये तीनों बात साथ हो जाए तो उसको एक शब्द में पात्रता बोली जाती है। विस्तार में तो वही बात है कि हमको आत्मकल्याण की भावना तीव्र हो गए, तीव्र आत्मकल्याण की भावना हो गए तो दर्शन हो की मंदता होगी, और चूक होगी तो भावना को ठेस पहुंचेगी, तो ज्ञान में विवेक आ जाएगा ये ठीक नहीं है, और कसाई जोर नहीं करेगा, तीव्र नहीं हो पाएगा, और तीनों का कोऑर्डिनेशन होने से ही पात्रता आएगी। ये चर्चा तो बहुत चलती है हमारे यहाँ, कहीं पहलू से चलती है। यहाँ तो क्या बात चली है कि हमारे यहाँ हम लोग समय सारा दिन शास्त्र पढ़ते हैं जिसमें स्वरूप की महिमा आती है, आचार्यों ने कही है, गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, गुरुदेव भी स्वरूप की महिमा चैतन्य रस में विभोर होकर के करते हैं प्रवचन में, तो चैतन्य स्वरूप स्वभाव की स्वरूप की बात आती है तो आत्मरस में सराबोर होकर के महिमा करते हैं, प्रत्यक्ष देखा भी है सुना भी है, और हमको द्रवगुण पर्याय से उत्पाद हुई ध्रुव से, ध्रुव क्षेत्र काल भाव से, और आत्मा की गुण संपत्ति से बहुत समझाए। विकल्पात्मक ज्ञान में हमको समझ भी आती है और चाहते भी है कि हमको आत्मा की महिमा होवे तो अच्छा है, और विकल्प पूर्वक करते भी है, यहाँ तक गाड़ी चलती है। फिर भी हमारी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है, ये प्रश्न उठा है, इसलिए ये प्रश्न उठा है यहाँ से कि क्या बात रह गई, ऐसी कौन सी बात रह गई के स्वरूप को समझते हुए और विकल्प की भूमिका में खड़े हैं तो विकल्प पूर्वक महिमा करते हुए भी हमारा कार्य नहीं हो रहा है, ये समस्या सामने आई है। इसका समाधान बेन से देते हैं कि विकल्पात्मक ज्ञान अधिक हो तो शुद्ध स्वरूप की विशेष महिमा आए, ऐसा नहीं है। उसमें क्या था, कहीं लोग, कहीं मुमुक्षु लोग और स्पष्ट करके समझाओ, और स्पष्ट करके समझाओ, हमको स्पष्टता आएगी तो स्वरूप की महिमा बढ़ेगी, अधिक स्पष्ट कीजिए, अधिक स्पष्ट कीजिए, ये बात चली थी। तो क्या ये ज्यादा स्पष्टता मिलने से लाभ हो जाएगा ना? और स्पष्टता देते भी थे गुरुदेव, लेकिन ऐसे लाभ नहीं होता था। और ऐसे लाभ नहीं होगा, ये उत्तर दे रहे हैं, ऐसे लाभ नहीं होगा। द्रव गुण पर्याय का अधिक ज्ञान हो, जीव को द्रव गुण पर्याय का अधिक माने स्पष्ट ज्ञान हो तो अधिक महिमा आ जाए, ऐसा भी नहीं है। पर वो बात स्पष्ट है, जो परिस्थिति खुली है या परिस्थिति खुली हो गई है, इसमें ये उत्तर तो स्पष्ट हो ही गया कि कितना भी अधिक समझा हो, जाना हो, इसलिए कोई अधिक महिमा आ जाए, ये बात तो बनी नहीं और बनती भी नहीं है। महिमा वह स्वयं जुदी परिणति है और विकल्पात्मक ज्ञान वह जुदा है। स्वरूप की महिमा एक अलग ही परिणति है, विकल्पात्मक ज्ञान कोई जुदी बात है, दो बात अलग है। महिमा में ज्ञान बाह्य साधन बनता है, बन सकता है, कभी किसी को जानकारी नहीं हो, नया हो, बनता है प्रारंभ में, परंतु अधिक ज्ञान हो, अधिक स्पष्टता करे तभी अधिक महिमा है, ऐसा नहीं है। इसका कारण है कि किसी को उघाड़ इतना नहीं होता है, किसी को उघाड़ ज्यादा होता है, तो ज्यादा उघाड़ वाले को कोई महिमा ज्यादा आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, और कम उघाड़ वाले को कम महिमा आती है, ऐसी भी बात नहीं है। कितने ही लोगों को ज्ञान अल्प हो और अंतर में महिमा तथा परिणति में चैतन्य की ओर का झुकाव बहुत अधिक हो जाए, ऐसा भी बनता है, तो बात तो घूम फिर के यहाँ आती है कि अल्प ज्ञान हो या ज्यादा ज्ञान हो, स्वलक्ष्य है या परलक्ष्य, देख लो, बस उतनी सी बात है। और संसार भक्ति में स्वरूप भक्ति नहीं, महिमा तो भक्ति है ना, महिमा तो भक्ति है। तो संसार भक्ति में स्वरूप भक्ति नहीं और स्वरूप भक्ति में संसार भक्ति नहीं रहती। अब देखिए हमको किस किसकी भक्ति है, हमको अपने आप में इसकी तलाश कर लेनी है। एक जीव का सत्संग के क्षेत्र में प्रवेश होता है, कुछ एक समय तक यथार्थता में नहीं आता है, कुछ समय के बाद यथार्थता में आता है। ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों होगा किसी को, तीनों काल में ले लें। कानून तो तीनों काल के लिए एक ही है, कानून नहीं बदलता। तो जहां तक संसार भक्ति रहेगी वहां तक स्वरूप भक्ति यथार्थ आएगी नहीं। संसार भक्ति कम होगी, स्वरूप भक्ति में आने का अवकाश होगा। बस दो परस्पर विरुद्ध बात है। हमारी रुचि, हमारी जरूरत, हमको आवश्यकता किसकी है वही हमको देखना है। संसार के सभी प्राणियों को तो संसार की चीजों की आवश्यकता है ही। तब इस क्षेत्र में आने के बाद वही बात रह गई तो यहाँ प्रवेश हुआ वो बेकार जाएगा। और पलटा खाया और हमको स्वरूप की चाह हुई तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, चाह नहीं है तो राह भी नहीं है। बात तो स्पष्ट है, हमको अपने आप को टटोल करके देखना है कि हमारी क्या हालत है और हमको क्या चाहिए। अभी वर्तमान में हमको क्या चाहिए टटोल लेना, हमको वर्तमान में क्या चाहिए। अगर हमको हमारा आत्मकल्याण नहीं चाहिए तो हमको पारमार्थिक प्रीति नहीं है। कल आया ना पारमार्थिक प्रीति सत्संग से बढ़ती है या उत्पन्न होती है, उत्पन्न भी होती है और बढ़ती भी है। पारमार्थिक प्रीति नहीं है, आत्मकल्याण करने की प्रीति नहीं है, हमको हमारा आत्मकल्याण ही प्रिय नहीं है तो संसार की प्रीति तगड़ी है, परिणाम का झुकाव वहां रहेगा। बस कितनी सी तो बात है। क्या कहते हैं, कितने ही लोगों को ज्ञान अल्प हो और अंतर में महिमा तथा परिणति में चैतन्य की ओर का झुकाव बहुत अधिक हो जाए, ऐसा भी बन सकता है। विषय रहा पात्रता का, अपने वचनामृत में भी हाँ। महिमा में ज्ञान बाह्य साधन बनता है, बन सकता है, समझ वाला। परंतु अधिक ज्ञान हो तभी महिमा आए ऐसा नहीं है। क्यों कि कितने ही लोगों को ज्ञान अल्प हो और अंतर में महिमा तथा परिणति में चैतन्य की ओर का झुकाव बहुत अधिक हो जाए, ऐसा बनता है। वचनामृत में भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि सोपसम वाला, सोपसम वालो नहीं पामे, पात्रता वालो पाम से, योग्यता वालो पाम से। सोपसम वालो नहीं पामे पर पात्रता वालो पाम से, वो बात उन्होंने कही है। तो क्षोभसम में ज्ञान अधिक होता है, ज्यादा क्षोभसम होता है तो ज्ञान अधिक होता है, इसको प्राप्ति हो जाए ऐसी कोई बात है ही नहीं। पात्रता चाहिए पामने के लिए, तो पात्रता चाहिए, बस एक ही बात है। हाँ, वो ज्ञान आत्मज्ञान की बात के लिए 200 नंबर की वचनावली में आया कि ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञान का नाश होता है। ज्ञान का नाश कैसे होता है? कि ज्ञान प्राप्ति होने से। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञानी के पास जाना चाहिए, वो स्वाभाविक समझ में आए, ऐसी बात है। वो ज्ञान अज्ञान में क्या लिया? ज्ञान में आत्मज्ञान की बात लिया है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही अज्ञान मिटेगा, इसके पहले नहीं मिटेगा। यहाँ विकल्पात्मक ज्ञान का प्रश्न चलता है। क्या प्रश्न उठाया है? कि हमको अपना शुद्ध स्वरूप का विकल्पात्मक ज्ञान बराबर है, यथार्थ माने बराबर है, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, उत्पाद से, व्यय से, ध्रुव से और गुण गुणी भेद से, सभी पड़खों से हमको आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान हुआ तो हमको स्वरूप की महिमा आएगी कि नहीं आएगी? कि नहीं आएगी। और वो परिस्थिति हमारे यहाँ खुली हो गई है, लोग अच्छी तरह समझते हैं, समझाते भी हैं, वहां तक समझते हैं कि दूसरों को समझाते भी हैं। आत्मा की महिमा नहीं आई, वो समस्या वैसी की वैसी खड़ी रही। तो इसके लिए इसका क्या समाधान है? तो पात्रता चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान विकल्प वाला ज्ञान बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्प ज्ञान वाले को भी महिमा आती है। तो क्या, किस चीज की कमी रही? कि पात्रता की कमी रही। ज्ञानी का मार्ग दर्शन मोह का अनुभाग घटाने के लिए होता है, न ज्ञान का क्षोभसम बढ़ाना है, न चारित्र गुण का क्षोभसम बढ़ाना है। चारित्र गुण का क्षोभसम बढ़ने से क्या होता है? कषाय मंद होता है। कषाय मंद होता है तो क्रियाकांड में लग जाता है लोग, कोई पूजा, कोई भक्ति, कोई व्रत, कोई उपवास, कोई तपश्चर्या, इसमें लग जाते हैं। वो चारित्र का क्षोभसम हुआ। और बाह्य ज्ञान में शास्त्र ज्ञान बढ़ जाता है, बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत समझ लेते हैं, इससे कोई काम नहीं होता है। इसलिए ज्ञानियों ने ध्यान खींचा है कि तुम्हारा जो गड़बड़ है वो तुम्हारी जो श्रद्धा है वो पूरी ताकत से उल्टी परिणमन कर रही है। उनकी ताकत को तोड़ो। अगर तुमको सम्यक दर्शन माने श्रद्धा को सलटानी है तो ये तो बहुत बड़ी ताकत से उल्टी काम कर रही है। उसकी ताकत बहुत है। बहुत है मतलब क्या है? कि ये ज्ञान गुण का क्षोभम और चारित्र गुण का क्षोभम उसको पलटा नहीं सकता। द्रविलिंगी को क्या होता है, शास्त्र ज्ञान भी बहुत होता है, समर्थ में समर्थ दृष्टांत ले ले वे, और चारित्र गुण का भी क्षोभम बहुत है। दिगंबरी दीक्षा धारण करके 28 मूल गुण का पंच महाव्रत आदि का निरतिचार पालन करता है, कितनी शक्ति है देखो, शक्ति कितनी है, और शास्त्र ज्ञान अंग पूर्व का। अभी तो हजारवा भाग में लाखवा भाग का भी नहीं मिले, इतना तगड़ा। श्रद्धा को सलटाने में वो समर्थ नहीं है, क्यों कि वहां राग की और विकल्प की प्रधानता रही, और राग और विकल्प में श्रद्धा को पलटाने की ताकत नहीं है, ये बात साफ साफ है। तो ये बात को हमको समझना पड़ेगा कि कार्य पद्धति क्या है, और ढंग से काम होगा तो काम बनेगा, ढंग से काम नहीं होगा तो काम पर अटैक करेगा। क्या अटैक करो, दर्शन हो पर अटैक करो, अपनी शक्ति को इधर उधर मत खर्च करो कि चलो हम ये करके बैठ जाए, वो करके बैठ जाए, अभी परीक्षण के दिन आएंगे ना, तो स्वतः भर के तो चल ही रहे हैं। लोग ज्यादा उपवास आदि में चले जाते हैं या पूजा भक्ति में चले जाते हैं, और दर्शन वो कमजोर हुआ कि नहीं हुआ, विकल्प भी इसका विचार भी नहीं आएगा, जांच तलाश तो करेंगे भी कहां से, ये बात हो जाती है। और बहुभाग लोग संप्रदाय की रूढ़ी में फंस जाते हैं, ये रूढ़ी रिवाज कोई धर्म का स्वरूप है ही नहीं, ये कोई धर्म का स्वरूप नहीं है, और धर्म का स्वरूप तो नहीं है, धर्म का कारण भी नहीं है। चाहे सारी जिंदगी करते रहो, धर्म की प्राप्ति नहीं हो। इसलिए जो सारी योजना है वो दर्शन मोह को कमजोर करने की है, और उतना कमजोर करते हैं, उतना कमजोर करते हैं, मृतप्राय कैसा होता है, मुर्दा जैसा हो जाए, मार मार के मुर्दा जैसा बना दिया, फिर मरेगा, वो भी पहले दबता है, उपशम होता है, उपशम सम्यक दर्शन होता है सबसे पहले, ऐसे क्षायिक नहीं में, साक्षायिक में कोई नहीं आता। तीर्थंकर का द्रव्य हो गए तो भी सबसे पहले सभी को उपशम सम्यक दर्शन होता है। मैंने सत्ता में दर्शन मोह की सत्ता रहती है, बाद में क्षायिक होता है, फिर कोई गुंजाइश नहीं है मिथ्यात में आने की। और उपशम वाला तो श्राद्ध में पलट करके उपशम होता है, और केवलियों के जमाने में, केवलियों के पाद मूल में क्षायिक भी किसी को होता है, उपशम में से क्षायिक में आता है, बाकी बहुभाग तो उपशम में से क्षोपशम सम्यक दर्शन में ही आते हैं। तो वहां सत्ता में रहता है वो, क्षयोपशम में भी कुछ अंश में क्षय है, कुछ अंश में उपशम है। सात प्रकृतियां है, चार चारित्र मोह की है अनंतानुबंधी की, और तीन दर्शन मोहनी की है, उसमें कुछ का क्षय और कुछ का उपशम होता है। तो ये उपशम है वो दबा हुआ है, अगर उसका उदय हो गया तो जिस प्रकृति का क्षय हुआ था वो भी वाइप ऑफ हो जाएगा, अनंतानुबंधी चालू हो जाएगी, सातों प्रकृतियां चालू हो जाएगी, मिथ्याता ज्ञान चालू हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी भी रिस्क नहीं लेते। पहुंचा है, यानी भी सूक्ष्म दशा में होते हुए रिस्क नहीं लेते, ऐसी बात बहुत सावधान होते। महिमा आने से पलटना हो जाता है, भले ज्ञान अल्प हो, ज्ञान भले अल्प हो, सही महिमा आए तो पलटना हो जाता है, परंतु अपने अस्तित्व का ग्रहण करे, भले ज्ञान अल्प हो परंतु अपने अस्तित्व का ग्रहण करे, साथ ही इतना हो कि मैं पर से भिन्न हूँ, तो उसे अंतरंग में महिमा आकर तथा विभावों की महिमा छूकर अंतर से विरक्ति हो जाए। थोड़ा लंबा वाक्य है, अपने को एक एक बात को समझना पड़ेगा क्या है। ज्ञान महिमा आने से तो पलटा खा जाएगा, जीव वो स्वरूप की महिमा आ जाएगी तो लाइन पूरी बदल जाएगी, लेकिन स्वरूप की महिमा आती है कब, ये सवाल है। यथार्थ रूप से स्वरूप की महिमा आती है कब, इसका सॉल्यूशन इधर दिया, इसका समाधान इधर दिया। तो ज्ञान भले ही अल्प हो, क्षयोपशम बढ़ाने की, बाह्य ज्ञान बढ़ाने की चेष्टा मत करिए, करिए मत। हमको कुछ एक बात का निर्णय करना पड़ेगा, जब हमारी तत्वज्ञान के क्षेत्र में प्रवृत्ति है तो हमें कुछ निर्णय करना पड़ेगा कि हमको सूक्ष्म ज्ञान नहीं बढ़ाना है, हमको बाह्य ज्ञान नहीं बढ़ाना है, हमको पात्रता बढ़ानी है, हमको भावना बढ़ानी है, हमको रुचि बढ़ानी है, हमको आत्मकल्याण की प्रीति होनी चाहिए, क्यों कि अल्प ज्ञान में भी ये हो सकता है, सूक्ष्म अल्प हो तो भी ये हो सकता है। इसलिए ज्ञानी को सूक्ष्म ज्ञान वाले का मूल्य नहीं आता और अल्प ज्ञान वाला है तो उसका कीमत कम है, ऐसी बात नहीं है। पात्रता वाले का मूल्य आता है, तो पात्रता किसकी अच्छी है वो देखते हैं, वो और उस पर वो प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता रहती है। किसका सूक्ष्म बढ़ जाए तो ज्ञानी को प्रसन्नता हो जाती है, वो बात नहीं है, ऐसी बात है। तो कहते हैं कि भले ज्ञान अल्प हो परंतु अपने अस्तित्व को ग्रहण करे, बस यहां से महिमा आती है। कहां से महिमा आती है? अस्तित्व ग्रहण करने से महिमा आती है। वो अस्तित्व ग्रहण क्या चीज है, ये शब्द प्रयोग कृपालु देव भी करते हैं और बैंसरी भी करते हैं, दोनों ज्ञानी में की शैली में वो बात आई है। सबकी शैली अपनी अपनी होती है, ये दोनों की शैली में थोड़ी साम्यता है। अस्तित्व ग्रहण, अस्तित्व ग्रहण मैंने भाव भाषण, क्या अस्तित्व ग्रहण माने भाव भाषण। अस्तित्व ग्रहण होने से भाव भाषण होता है और भाव भाषण में ही अस्तित्व ग्रहण होता है, वो क्या चीज है कि ज्ञान में जो ज्ञान वेदन है वो ज्ञान वेदन मालूम पड़ने से ज्ञान वेदन के दौरान अस्तित्व ग्रहण होता है। फिर से और स्पष्ट करें, विकल्पात्मक ज्ञान में विकल्प में अस्तित्व ग्रहण हो रहा है। क्या बात है, देखो वर्तमान परिस्थिति में विकल्पात्मक ज्ञान में विकल्प में अपना अस्तित्व ग्रहण हो रहा है, इसलिए स्वरूप की महिमा नहीं आती। जबकि अस्तित्व ग्रहण में वेदन ज्ञान के आधार से मेरे स्वभाव की, मेरा स्वभाव की, मेरा स्वरूप की मौजूदगी ऐसी है जैसा मेरा ज्ञान वेदन है, क्योंकि वो लक्षण है, जैसा लक्षण है वैसा स्वरूप है, ये स्वरूपभूत लक्षण है, ज्ञान वेदन है वो स्वरूपभूत लक्षण है। इसलिए जहां तक विकल्प में अस्तित्व ग्रहण है, यानी विकल्प में अपना अपने रूप का अनुभव है, वहां तक सूक्ष्म ज्ञान कोई काम में नहीं आता, बेकार जाता है। और अबाल गोपाल को जो वेदन ज्ञान चल रहा है उसके आधार से, उसके अवलंबन से वेदन के दौरान स्वभाव का ग्रहण होता है, तब अस्तित्व ग्रहण हो जाता है। और अस्तित्व ग्रहण होता है तब जैसा स्वभाव है, माने स्वभाव में जितना अनंत सामर्थ्य है उतना भाव भाषण हो जाता है। क्या होता है, अपने स्वरूप में स्वभाव में बेहद सामर्थ्य है। कितना अनंत, मैंने बेहद सामर्थ्य है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, जितना है उतना भाव में भाषित होना, यानी लगना, यानी फील होना, उसको कहते हैं अस्तित्व ग्रहण। अस्तित्व ग्रहण क्यों किया, कि ये वेदन ज्ञान के आधार से स्वभाव की पहचान हुई, स्वभाव का भाव भाषण हुआ, उसमें जितना सामर्थ्य उतना सामर्थ्य ज्ञान में आ गया, और स्वभाव सामर्थ बेहद अनंत, स्वभाव सामर्थ ज्ञान में भाषित होने से सही महिमा आने लगती है, या सही महिमा उजागर होती है, सही महिमा उत्पन्न होती है, और सही महिमा चालू हो जाती है। वही स्वरूप की महिमा स्वरूप का निर्विकल्प होने के कारण बनती है। इसके पहले दूसरा कोई दूसरा प्रोसेस है नहीं, यही प्रोसेस है इसका। इसलिए अस्तित्व ग्रहण की बात रखी है, भाव भाषण की बात ली है। हाँ, वो पहले शुरू में बोला ना कि बाह्य साधन बनता है, तो सत्संग में जानकारी मिलती है, आत्मा अनंत अनंत शक्ति से भरा हुआ भरकट पदार्थ है, सब जानकारी तो मिलती है। जानकारी मिलना एक बात है, अस्तित्व ग्रहण होना दूसरी बात है। उसको जानकारी मिली, पहले जानकारी नहीं थी, अन्य मत में हो या जैन कुल में हो, संप्रदायों के लोगों में आत्मा का स्वरूप में क्या भरा है वो बात वहाँ चलती नहीं है, तो वो जानकारी भी वहाँ नहीं है। अब इस क्षेत्र में जानकारी मिलती है तो क्या होता है कि कई लोग जानकारी बढ़ाने में चढ़ जाते हैं, इस ब्रांच में हमको नहीं जाना है। जानकारी मिलते एक नई ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है, उसमें हमको जाना है। एक मूल में वो बात है जानकारी मिलने की, बोला कि बाह्य साधन बनता है, वो बात रखी उतने, परंतु जानकारी बढ़ाने से काम नहीं होगा। जानकारी हुई तो उसमें वो भी जानकारी कर लो कि पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने से फायदा नहीं है, वो जानकारी में ले लो, वो भी जानकारी होनी चाहिए। वो भी बात आती है और ज्ञानी वो भी बात करते हैं, तो हमारा प्रयोजन पर ध्यान जाना चाहिए। तो बात तो दो है, कोई जानकारी बढ़ाते हैं, कोई पात्रता बढ़ाते हैं। जानकारी बढ़ाने वाले को कुछ नहीं मिलता, नुकसान में जाता है, पात्रता बढ़ाने वाले को मिलता है, लाभ होता है, उसको नुकसान नहीं होता है। तो हमारा लाभ नुकसान पर प्रयोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए प्रयोजन पे। प्रयोजन पर हमारा लक्ष्य नहीं गया तो मुमुक्षुता आएगी नहीं और मुमुक्षुता का विकास वृद्धिपना होएगा नहीं, क्योंकि इसका आधार हमारे प्रयोजन पर हमारा लक्ष्य कितना है उस पर ही है, इसका आधार उसी पर ही है। ज्ञान में ज्ञान वेदन प्रत्यक्ष है, इस प्रत्यक्ष वेदन के अवलंबन से प्रत्यक्ष स्वरूप का प्रत्यक्षपणे भाव भाषण होता है, इसका और विस्तार से बात को विस्तार से लीजिए। तो क्या बात है, स्टेज वाइज इस बात को थोड़ा समझ ले। परिभ्रमण की चिंतना और वेदना से उत्पन्न उदासीनता, उस उदासीनता और वेदना की परिपक्वता से उत्पन्न पूर्णता का लक्ष्य यानी दृढ़ मुमुक्षुता, उस दृढ़ मुमुक्षुता के वशात वर्तमान परिणमन में निष्पक्ष रूप से अपक्षपात रूप से अपने दोषों का चलते हुए परिणामों में अवलोकन होना, उस अवलोकन की प्रैक्टिस सूक्ष्म और तीक्ष्ण होने से और प्रयोजन की दृष्टि भी सूक्ष्म और तीक्ष्ण होने से, अवलोकन सूक्ष्म होगा तब ये जो तिरोभूत ज्ञान वेदन चल रहा है वो मालूम पड़ेगा। क्यों कि अभी जो ज्ञान वेदन तो सबको चलता है लेकिन तिरोभूत अवस्था में है, ज्ञान विशेष का आविर्भाव है और ज्ञान विशेष का आविर्भाव होने से ज्ञेयों के प्रति हमारा झुकाव है, ये परिस्थिति में ज्ञान वेदन मालूम नहीं पड़ता है, होने के बावजूद भी मालूम नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हमको स्टेज वाइज अवलोकन के स्टेज में हमारा अवलोकन कैसा चलता है वो बात का वो स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इसकी परिपक्वता हुए बिना माने अवलोकन मैच्योर्ड पोजीशन में आए बिना उतनी सूक्ष्मता धारण नहीं करता कि वो वेदन को पकड़े। ज्ञान में ज्ञान वेदन से अस्तित्व ग्रहण किया जाता है, ज्ञान वेदन के आधार से अस्तित्व ग्रहण होता है। लेकिन वो कब होता है कि उतना स्टेज में अवलोकन में प्रवेश करके अवलोकन में भी परिपक्वता आए तब अस्तित्व ग्रहण होगा, भाव भाषण होगा। इस बीच में इन बिटवीन कोई सत्पुरुष का योग होता है और एक पहचान इसकी हो जाती है, फिर भाव वासन का स्टेज आता है अस्तित्व ग्रहण का। किसी को भी सत्पुरुष की पहचान हुए बिना अस्तित्व ग्रहण हुआ हो वो भी संभवित नहीं है। कि एक बीच में एक क्रम है। तो स्टेज तो स्व अपेक्षित है और पहचान होना उसमें थोड़ी सत्पुरुष की अपेक्षा होती है, जरूरत पड़ती है और जरूरत महसूस भी होती है। क्योंकि इतने तक आने में भी इतना स्टेज में प्रवेश पहले स्टेज में प्रवेश करने में भी और आगे बढ़ने में कदम कदम में परम सत्संग का योग चाहिए। जीव कहाँ कब भूलता है और कब उल्टा चला जाता है खुद को मालूम नहीं पड़ता, ये बात बनती है। तो इसलिए परम सत्संग योग चाहिए, सत्पुरुष की पहचान चाहिए, तन मन धन की आसक्ति पहचान की महिमा आने से भक्ति आने से छूट जाएगी। वो इसका एक साइड इफेक्ट है कि जैसे ही सत्पुरुष की अत्यंत भक्ति हुई कि तन मन धन की आसक्ति छूट जाएगी और लगेगा कि मैं मेरे लिए समर्पण करता हूँ, मैं सत्पुरुष के लिए समर्पण नहीं करता, ये समर्पण में मेरे लिए मुझे सर्वार्पण बुद्धि आई है। और तब ही उनको ये अवलोकन और अवलोकन में सूक्ष्मता होना और अस्तित्व ग्रहण होना वो बात बनने वाली है। वेदन के आधार से ही अस्तित्व ग्रहण होता है और साथ ही इतना हो कि मैं पर से भिन्न हूँ, ये वेदन से है वो कभी किसी से मिला नहीं। जीव ने अनंत काल तक ऐसा मिथ्या अनुभव किया कि मुझे ठंडी लगी, मुझे गर्मी लगी, मुझे कड़वा लगा, मुझे मीठा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ज्ञान वेदन एकांत शुद्ध रहा है। क्या ज्ञान वेदन एकांत शुद्ध ही रहा है, कभी किसी से मिला ही नहीं। इसलिए 833 पत्र में कृपालु देव ने कहा कि मैं एकांत शुद्ध अनुभूति स्वरूप हूँ, मैं एकांत शुद्ध अनुभूति स्वरूप हूँ वर्तमान में ही। तो ये जो भिन्न हो वो वेदन से भिन्नता मालूम पड़ती। जब अस्तित्व ग्रहण में वेदन के आधार से अस्तित्व ग्रहण होता है तो साथ साथ में भिन्न हो वो बात यथार्थ रूप से कुछ अंश में अनुभव गोचर होती है। फिर अनुभव के बाद पूरा भेद ज्ञान हो जाएगा, अभी भेद ज्ञान चालू हो गया और उसे अंतरंग महिमा आएगी स्वरूप की। जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य भाव में भाषित हो गया, ज्ञान में भाषित हो गया, तो अंतरंग महिमा आकर के विभाव की महिमा छूटकर अंतर से विरक्ति आ जाए। ये जो उदासीनता का प्रारंभ हुआ था वो अवलोकन से और बढ़ेगा और भाव भाषण में और विरक्ति आई जाएगी, क्योंकि भिन्नता का मालूम पड़ा, भिन्न भाव मालूम पड़ा कि मैं भिन्न हूँ और सब भिन्न है, मेरे से और सब भिन्न है, तो विरक्ति हो ही जाएगी। अपने में रस है, पराये में किसी को रस नहीं है। है कहीं हमारे सिटी में बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरियस रेसिडेंस, अपने को रस आता है इसमें? देखते हैं तो क्या बिना विकल्प होता है कि अपने को क्या लेना देना, हाँ अपने को क्या लेना देना। हम जर्मनी गए थे तो जहाँ हम गेस्ट हाउस किराए पे लिया 2 हफ्ते के लिए, उसके बगल में ही ये ओपेल का मिनिस्ट्री से ओपेल गाड़ी बनती है, ट्रेन में से वहाँ से पसार होते थे, दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियाँ, कितने गिन नहीं सके। इसको जो साइडिंग दिया था रेलवे साइडिंग, उसमें पूरी रैक, एक वेगन में 10 से 12 गाड़ी को लोड करते थे, ऐसा 50-100 वेगन में लोड की हुई गाड़ी पूरी रैक खड़ी हो और ग्राउंड में सैकड़ों गाड़ियां पड़ी हो, देखते विकल्प नहीं करना पड़ता कि अपने को क्या लेना देना। सब देखते हैं क्या लेना देना, हाँ? और अपनी एक होवे ने, इसमें से एक का पैसा दे दे और एक को अपनी बना ले, हाँ? फिर देखो पकड़ भाव में कितने आती है, हाँ? सैकड़ों देखे कुछ महिमा नहीं आएगी और अपनी एक की पूरी सावधानी पूरी पकड़ आ जाएगी। पराये में किसी को रस नहीं, अपने में रस है। ये भिन्न हो इसमें क्या हुआ, विरक्ति होगी, निरसता आ गई, मेरे को क्या लेना देना, न मेरे मकान से मेरा लेना देना है, न मेरी संपत्ति से मेरा लेना देना है, न मेरे परिवार से मेरा लेना देना है, सब भिन्न ही भिन्न है। अकेला आया अकेला चला जाऊंगा, अगर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करूंगा तो भी अकेला, परिभ्रमण करूंगा तो भी अकेला, और मोक्ष में जाऊंगा तो भी अकेला, भिन्न हूं मैं, विरक्ति आई जाएगी। ज्ञान अल्प होने पर भी पलट सकता है, सूक्ष्म बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान महिमा लाने में साधन बनता है शुरू में, परंतु ज्ञान अधिक हो तभी महिमा अधिक आ जाए ऐसी बात नहीं है। क्या ध्यान खींचा है, सूक्ष्म बढ़ाने की कोई चेष्टा करना नहीं चाहिए, पात्रता बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, बस वो बात है। तो उसी आशय से ये समाधान दिया है। आत्मस्वरूप के विषय में अनजाने जीव को जानकारी मिलती है, तब जब जानकारी मिलती है तब बहुभाग लोग जानकारी बढ़ाने में आगे बढ़ जाते हैं और विकल्पात्मक ज्ञान में अच्छी तरह जानकारी कर लेते हैं। परंतु इससे कोई फायदा नहीं होता और नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ पर इसी आशय से समाधान दिया है, इसी आशय को लेकर के समाधान दिया है। यथार्थ में तो ज्ञानी के मार्ग में प्रवेश करके पात्रता में आगे बढ़ करके अस्तित्व ग्रहण